राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के सातवां स्कंद सातवां अध्याय भक्तराज प्रहलाद महाराज एक भागवत पुरुष है, बारह महाजनों में एक महाजन है प्रहलाद। बारह महाजन प्रहलाद हो जनको तो प्रहलाद महाजन है। और महाजन शिक्षा दे रहे हैं, महाजन का मुख्य कार्य है शिक्षा देना। क्योंकि जब महाजन शिक्षा देते हैं तो सामान्य लोग उसके चरण चिन्हों में चलते हैं। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अच्छा, कब से शिक्षा देनी चाहिए? कौमारम आचरेत। और केवल कहा नहीं प्रहलाद महाराज ने, स्वयं ही अपने सहपाठी असुर पुत्रों को उपदेश देने लगे। कौन से धर्म का उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद महाराज? भागवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं। भागवत धर्म यह, भागवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं। और भागवत धर्म वो होता है जो सबके लिए है, सब समय के लिए है, सब जगह के लिए है। वो उसमें किसी का भी, किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं है कि ये भागवत धर्म का पालन नहीं कर सकता। ये भागवत धर्म की विशेषता है। तो अपने सहपाठियों को उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज? आज उपदेश में बहुत भारी बात कह रहे हैं। ऐसी भारी बात कह रहे हैं कि बहुत से लोग दुखी हो जाते हैं इससे। क्या कह रहे हैं पढ़िए। नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजः प्रणिनायः मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहु ज्ञाता न दानं न तपो नैज्या न शौचं न व्रतानि च प्रियते अमल्या भक्त्या हरेर अन्यद विडम्बनम्। नालं द्विजत्वं न देवत्वा ऋषित्वं वासुरात्मजः प्रणिनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहु ज्ञाता न दानं न तपो निज्या न शौचं न व्रतानि च प्रियते अमल्या भक्त्या हरेरन्यद विडम्बनम्। कीजिए नालं द्वयत्वं देवत्वं वासुरात्मजः न दानं न तपो न चेज्या न शौचं न व्रतानि च प्रियते क्रियते न मल्या भक्त्या हरेरण्यत विडम्बनम् नालं द्विजत्वं देवत्वं विशित्वं त्वं वात्मजात्मजा मुकुन्दस्य नावृतं न बहुज्ञता नितानं न तपो नेद्या न शौचं न वृतानि च ये मत्या भाग्या हरिण्यमिदं वनम् नालं द्विजत्वं न देवत्वं प्रेण्यायन मुकुन्दस्य न वृतं न बहु ज्ञाता न दानं न तपो नेद्या न शौचं न वृतानि च प्रियते अमल्या भक्त्या हरिरण्यः विडम्बनम्
न नहीं अलम पर्याप्त
पर्याप्त अलम अलम का मतलब ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है साधन जितने साधन कहे जाएंगे ना ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है मतलब भगवान को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। अब क्या द्वेजतम द्वेजतम का मतलब क्या अर्थ है अत्यंत पूर्ण एवं उच्च योग्य ब्राह्मण होना है शब्द शब्द बोलिए द्विजत्तम द्विजत्तम। अब कहते हैं देवत्वम देवता होना देवता ऋषित्वम साधु पुरुष होना वा अथवा असुर आत्मजा हे असुरों के वंशजो प्रियणाय प्रसन्न प्रसन्न करने के लिए मुकुन्दस्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुन्द का नव्रतम नव्रतम क्या इसका क्या अर्थ लिखा है जी पढ़िए जरा ये बुरा आचरण व्रतम का अर्थ कैसे होगा कुछ समझ में आया मेरे को तो नहीं आया विचार कीजिए व्रतम का अर्थ क्या होना चाहिए लिखा ऐसे ये नॉट गुड कंडक्ट इसका अर्थ ये है कि अच्छा व्यवहार करना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल व्रत वैसे व्रत शब्द का अर्थ है कि जैसे हमने व्रत धारण किया है कि भाई नशा नहीं करेंगे ये व्रत है व्रत धारण का अर्थ है कोई वचन करना जीवन में तो केवल व्रत ही कोई करता है व्रत का अर्थ भूखा मरना नहीं है तो ये व्रत मतलब कोई अच्छा जीवन में संकल्प करना कि मैं अच्छा ही ये कार्य करूंगा वो भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए। ऐसे पढ़ेंगे तो बड़ा ये अटपटा लग रहा है नहीं व्रत व्रत का अर्थ ये व्रत का अर्थ क्या है बुरा आचरण नहीं करना होना ये चाहिए बुरा आचरण नहीं करना लिखा है नॉट बैड तो ये शब्द ठीक नहीं है व्रतम बुरा आचरण नहीं करना ना पीछे पड़ा है ना नहीं वृत्व का अर्थ है अच्छा, तो अच्छा नहीं मतलब जो जो जिसको जिस अच्छे काम को नहीं करे जो वर्ण वर्ण करना कोई चीज वर्ण करना, तो नवर्तम का मतलब नहीं वर्ण करना किसको किसको नहीं वर्ण करना बुरी आदतों को वर्ण नहीं करना इसका मतलब अच्छा काम करना यार तो यही होगा ना बुरा आचरण नहीं करना इसका अर्थ ना कितना भी अच्छा आचरण करो फिर भी मुकुंद प्रसन्न नहीं होंगे अच्छा जी आगे क्या लिखा है बहु ज्ञाता पांडित्य न तो दानम ये प्रवचन में बाहर जाके मत कहना कि दान कहने से भगवान नहीं मिलेगा नहीं तो कहां से खाएंगे लेकिन ये कहना पड़ेगा केवल दान से नहीं माला भी जपो दान भी करो ये साव कुछ बातें कब कहां कहनी चाहिए उसका भी विचार करना चाहिए न दानम न दान देना तप तपस्या न तो इज्जा पूजा न तो शौचम स्वच्छता न व्रतानि न व्रतों का पालन चा भी प्रियते प्रसन्न किया जाता है अमल्या निष्कुलश अमल्या अमल साफ सुथरी भक्त्या भक्ति द्वारा हरि ही परमेश्वर अन्यत अन्य वस्तुएं विडम्बनम मातर दिखावा है। तो श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं हे मित्रो असुर पुत्रो तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण देवता या महान संत बनकर न ही सदाचरण सदाचरण तो वर्म का अर्थ क्या है सदाचरण या शब्द का सदाचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो इनमें से किसी भी योग्यता से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है न ही दान तपस्या यज्ञ शुद्धता या व्रतों से फिर वापस व्रत यहां भी आ गया उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है भगवान तो सभी तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल नित्य भक्ति करता है एक निष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य का भी एक बार ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं प्रहलाद महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर की सभी प्रकार से निष्ठापूर्वक सेवा करने पर ही कोई पूर्ण बन सकता है इसका अर्थ क्या हुआ अन्य जितने साधन हैं जहां जो इस श्लोक में लिखे हैं वो अपूर्ण है तो क्या क्या अपूर्ण है और अपूर्ण ये अपूर्ण प्रभुपाद ने यहां क्यों लिखा कौन सा शब्द इस श्लोक में है जिसके कारण अपूर्ण लिखा अलम पर्याप्त है ही नहीं है सारे जो चीज पर्याप्त नहीं है वो कोई पूर्णता पूर्ण कर नहीं सकती है तो ये सब साधन पूर्ण नहीं है क्या करने के लिए मुकंद को प्रसन्न करने के लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सब साधन पूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अपने आप में ये साधन बिना भगवान की प्रेम भक्ति के भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। और कौन से साधन है हमने पढ़े हैं, फिर देखते हैं। ईश्वर प्रेम विकसित करने के लिए, ईश्वर प्रेम विकसित करने के लिए ये नहीं लिखा है कि ईश्वर प्रेम पैदा करने के लिए, क्या लिखा है? और विकसित करने और पैदा करने में अंतर है। विकसित करने का अर्थ है कि आपके पास है उसको बढ़ाना है, और पैदा करने का अर्थ है कि नई चीज बनानी है। तो भगवान का प्रेम जो है वो तो विकसित करना ही है, केवल विकसित करने के लिए। दूसरा कौन सा शब्द हम प्रायः उपयोग करते हैं प्रेम का? उदय करना, क्या कहते हैं? कृष्ण प्रेम का उदय करना, इसका अर्थ है कृष्ण प्रेम पहले हमारे हृदय में भगवान ने भर के भेजा है, उसको विकसित करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए। वैसे प्रहलाद महाराज हमारे नवदा भक्ति के आचार्य हैं, और ये नवदा भक्ति प्रायः साधन भक्ति है। ये साधन नौ ही साधन भक्ति के अंग है। ये ऊपर भाव और प्रेम भक्ति में भी इनका उपयोग होता है, परंतु है ये मुख्य रूप से साधन भक्ति। तो प्रभु प्रहलाद महाराज का ये कहना कि ये ईश्वर प्रेम विकसित करने के लिए ब्राह्मण देवता ऋषि जैसे भौतिक उच्च पद, इसको भौतिक उच्च पद क्यों कह दिया, इसके ऊपर विचार करते हैं। ब्राह्मण देवता ऋषि जैसे भौतिक उच्च पद कारण स्वरूप नहीं है, किंतु यदि कोई निष्ठा पूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी कृष्ण चेतना पूरी हो जाती है। इसी की पुष्टि भगवत गीता द्वारा 9:30 में होती है। चलो ये तो आगे पढ़ें, उससे पहले इतना तो समझ लें। क्या पढ़ा हमने अभी, किसी को याद है, समझ में आया? क्या पढ़ा बहुपद ने भौतिक शब्द क्यों लिखा? ब्राह्मण के लिए, देवता के लिए, ऋषि के लिए भौतिक शब्द क्यों लिखा? क्या है ये? प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर आते हैं, ये सत्वगुण की वृत्ति है। ब्राह्मण एक तो सत्वगुण की वृत्ति है, और सत्वगुण तो भौतिक ही है ना, तो ब्राह्मण तो सत्वगुण है, और देवता भी सत्वगुण में है, ऋषि भी प्रायः सत्वगुण में है, ज्ञानी है, और ज्ञान सत्वगुण में है, इसलिए भौतिक कहा। इसका प्रभुपाद ने लिखा है, इसका प्रमाण कहाँ है? वर्ण आश्रम को जब रामानंद राय कहने लगे चैतन्य महाप्रभु को, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये बाहर है, क्यों बोला? ये भी तीनों गुणों के अंतर्गत आता है। तो ब्राह्मण तो तीनों गुणों के अंतर्गत ही है ना, तो ये भौतिक है। और दूसरा प्रभु जी जैसे कह रहे हैं, ये क्या है? ये सारी उपाधियां हैं। उपाधि का मतलब क्या होता है? शरीर के स्तर के ऊपर पहचान। ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा देवता नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, ऋषि नहीं है। और भक्ति हमारा स्वरूपगत धर्म है, भक्ति हमारा स्वरूपगत धर्म है, ये भौतिक नहीं है। भक्ति, भगवान और भक्त, ये तीनों भौतिक प्रकृति के प्रभाव से ऊपर हैं। ये भगवान की स्वरूप शक्ति, ये भगवान की स्वरूप शक्ति के आश्रित हैं। सो भौतिक क्यों है, इस बात को हमने समझा। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? ब्राह्मणत्व, वैसे शब्द था द्वेज, द्वेज किसको कहते हैं? द्वेज शब्द का अर्थ है जिसके दो जन्म हो, द्विज, दो जन्म। और कितने द्वेज शब्द के उदाहरण आपको आते हैं? एक तो ब्राह्मण है और पक्षी को द्विज कहते हैं, ये जो उड़ने वाले परंदे हैं ना पक्षी, इसको द्विज कहते हैं। क्यों? इसके भी दो जन्म होते हैं, पहले अंडे में होता है फिर पर निकलते हैं, उसको भी द्विज कहते हैं। और दांतों को भी द्विज कहते हैं हमारे, पहले बेचारे दूध के दांत आते हैं फिर बड़े दांत आते हैं, उसको भी द्विज कहते हैं। तो यहां द्विज का अर्थ है ब्राह्मण। प्रभुपाद ने तो बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है उसके लिए शब्द अर्थ में, अच्छी तरह से क्या शब्द लिखा है, बहुत सुंदर शब्द लिखा है, अत्यंत पूर्ण एवं उच्च योग्य ब्राह्मण होना। बहुत बड़ी बात है द्विज, बहुत ऊंचर का स्तर है, फिर भी भगवान मुकुंद को प्रसन्न नहीं कर सकता, भगवान के प्रेम को विकसित नहीं कर सकता। तो उसके दो कारण अभी हमको समझ में आए, कौन से? एक तो वो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हैं और दूसरी उपाधियों से युक्त हैं, ठीक है, इसलिए ये पर्याप्त नहीं है। और इसके लिए प्रभुपाद जी एक श्लोक जो लिख रहे हैं भगवद गीता का, वो कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, उसके ऊपर भी आप विचार करके देखते हैं। श्लोक कौन सा दिया है? अपीचे तस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य, फिर क्या है, सम्यक विवस्थितो ही सह। ये श्लोक ऐसा अद्भुत श्लोक है, इसके बहुत सी परिभाषाएं हमारे आचार्यों ने लिखी है। यहां प्रभुपाद जी कौन सी दृष्टि से लिखते हैं कि भगवान उसको साधु मान रहे हैं जो न ब्राह्मण है न देवता है न ऋषि है, परंतु कहीं उससे कोई बहुत ही घृणित कार्य भी हो गया है। ये घृणित कार्य की परिभाषा इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने कैसे लिखी है, ये देखो, ये श्लोक प्रभुपाद जी का लिखना और ऊपर ब्राह्मण को ऋषि को देवता को भौतिक लिखना, इसके पीछे प्रभुपाद जी के लिखते के समय क्या विचार चल रहा था, असल में ही प्रभुपाद के मनोभाव को समझना है। इस श्लोक जो अब हम लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं अपिचेत शुद्राचारो, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या लिखा है, किसी को याद है? आप लोग सब प्रायः भक्ति शास्त्री किए हुए हैं या कर रहे हैं, इस श्लोक के तात्पर्य में क्या लिखा है? और वो प्रभुपाद जी का तात्पर्य मैं संकेत देता हूं, भक्ति विनोद ठाकुर की टीका से लिया गया है। तो हमारे एक है हमारा स्वरूपगत, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कंडीशनल, जीव के दो स्थितियां होती हैं, एक हमारी स्वरूपगत आत्मा के आधार पे हमारा स्वरूप है और एक हमारा शरीर के आधार के ऊपर विचार है, जो हमारे कर्मों के अनुसार शरीर मिला है। तो ये अंग्रेजी में दो शब्द है, इसका हिंदी अनुवाद आप कीजिए, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कार्य है और एक कंडीशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल का अर्थ है स्वरूपगत और कंडीशनल का क्या कहेंगे, परिस्थितियों के वृत्ति पर परिस्थितियों के अनुसार। तो ये जो इस श्लोक में भक्त का कहा गया है वो स्वरूप से तो भगवान का भजन कर रहा है, स्वरूपगत कार्य में तो मेरा भजन कर रहा है, भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है स्वरूप से। परंतु बिचारे का जो शरीरगत धर्म है उसमें कुछ दोष आ जाते हैं, शरीरगत धर्म में कुछ त्रुटि आ जाती है, इसलिए उसको स्वरूप से तो चूक न हुआ, शरीर से हुआ, शरीर वैसे ही छूट जाएगा, इसकी चिंता क्यों करना। अब आत्मा के धर्म में तो पक्का पुख्ता है ना। इस श्लोक की एक रसिक परिभाषा लिखी है, क्या लिखी है, बड़ी अच्छी लिखी है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अने भा, मुझ श्री कृष्ण को गोपियों के साथ रासलीला में विहार करते हुए भी जो दुराचार नहीं समझता है और फिर भी मेरा भजन करता है वो साधु है। जो मेरे ऊपर दोष दृष्टि नहीं रखता है वो वास्तव में साधु है। मेरा कार्य जो है ये यहाँ इसमें भी जो आया है ये सब क्यों नहीं पूरे हैं, ये बहुत सुंदर एक श्लोक है, वो श्लोक तो मुझे ऐसे याद नहीं है लेकिन बहुत अधिक उच्च, कोई वेद पढ़े तो पढ़ने दो, कोई शास्त्र पढ़े तो पढ़ने दो, जिसको भय है संसार में वो करता रहे, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो इस नंद नंदन कृष्ण का शरण लेता हूँ, नंद बाबा का शरण लेता हूँ, कृष्ण का भी नहीं, नंद बाबा का शरण लेता हूँ जिनके आंगन में ये गोपाल लीला कर रहा है। किसी को पीना है तो करेले का जूस पिए, जाके वेद पढ़े उपनिषद पढ़े, किसी को नीम का जूस पीना है तो जाके पिए, मैं तो मधुर कृष्ण के अमृत का पान करता हूं जो ब्रज में, ब्रज में क्या करते हैं, ये चेतना महाप्रभु को मुझे याद अब आता है कि रघुपति उपाध्याय ने ये श्लोक दो पढ़े थे, चेतना चरित अमृत में रघुपति उपाध्याय मिलने आए थे तो ये दो श्लोक पढ़े थे और चेतना महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, बोला यही कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर विकसित कर सकता है, यही कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है, बहुत बड़े प्रसन्न हुए थे चेतना महाप्रभु ये सुनकर। श्लोक आपने पढ़े हैं, किसी ने ये देखे हैं कहीं, श्रुति मित्रे श्रुति स्मृति मित्र, मैं समझता हूँ ये मैं अभी जस आलंदे परम ब्रह्म, इतना मेरे को भी याद है, अब मैं वो रघुपति उपाध्याय निकाल लूँ तो अच्छा है, मध्य लीला में रूप गोस्वामी की शिक्षा में होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ ये आ गया रघुपति उपाध्याय जी। श्रुति अपरे स्मृति इतरे भारतम अन्य भजन्तो भवभीता, अहम इह नन्दम वंदे यशालंदे परम ब्रह्मा। ये श्लोक सुन कौन रहा है, भगवान श्री चेतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं रघुपति उपाध्याय, और सुन के श्रुति अपरे, कोई कोई वेद पढ़े, कोई पुराण पढ़े, कोई महाभारत पढ़े, क्यों पढ़ते हैं, बोला संसार से डरते हैं कि हमारे को जन्म मृत्यु लेना न पड़े, पढ़ने पढ़ने दो, मैं तो नंद बाबा की वंदना करता हूं जिसके प्रेम से कृष्ण उसके घर में बाल लीलाएं कर रहे। इसके बाद वाला श्लोक ये है, आगे कहे प्रभु वाक्य उपाध्याय कहला रघुपति उपाध्याय रह नमस्कार कहला। महाप्रभु कह रहे और आगे कहो, तब ये श्लोक कहते हैं किम प्रति कथ्यतम ईशे संप्रति वो प्रतितम आयुतम गोप पति तनया कुंजे गोप वधुटी विटम ब्रह्मा। कौन मेरी बात के ऊपर विश्वास करेगा, किसको मैं बताऊं के परम ब्रह्म श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान गो वृंदावन के कुंज में गोपियों के वो छेड़छाड़ कर रहा था। बोले कौन मेरी बात के ऊपर विश्वास करेगा, कौन किसको मैं ये बताऊं कि वो परम ब्रह्म श्री कृष्ण जिसको वेद स्तुति करता है वो ब्रज में कुंजों में लताओं में गोपियों, यहाँ शब्द क्या लिखे हैं, ब्रज गोप वधुटी विटम, विटम का मतलब है शिकारी, शिकार करता है, शिकारी शब्द लिखा है शिकारी, गोप वधु विटम ब्रह्म और है भी ब्रह्म, कौन मेरी बात के ऊपर विश्वास करेगा, और जो इसके ऊपर विश्वास करे उसके ऊपर ये श्लोक लगता है, जो कृष्ण की ऐसी लीलाओं को देखकर फिर भी उसकी भक्ति करे उसके लिए ये श्लोक है। अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, मुझे भले मेरे सारी लीलाओं को देखे के दुराचार कर रहा है फिर भी मेरा भक्त बना रहे, वो वास्तव में साधु है, वो ही सही है। और फिर लिखा है इसके बाद वाला श्लोक क्या है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सच्चुचांति निगच्छि। जो ऐसे भक्त को देखेगा और मानेगा वो ही साधु बनेगा और जल्दी बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, वो तो पहले ही भक्त है। ये बहुत ये है भक्ति विनोद ठाकुर की रसिक इसके ऊपर भाव। तो ये प्रभुपाद ने यहां श्लोक लिखा है इस दृष्टि से कि ये भौतिकवादी नहीं है, ये उपाधियों से मुक्त है, ये अपने स्वरूप में स्थित है, ये तो मेरे प्रेम में लगा हुआ है, सम्यक व्यवस्थित वही था, ये तो मेरे चरणों में आके बैठा हुआ है। इसलिए ब्राह्मण बनना, देवता बनना, ऋषि बनना आवश्यक नहीं है, कोई भी अपने स्वरूप में मेरे प्रेम को विकसित कर सकता है। वैसे भी इन तीनों में ब्राह्मण को भी अहंकार होता है अपने ज्ञान का, देवता तो भोग योनि है ही, और ऋषियों को भी मत अलग होता है, हर एक ऋषि का मत अलग है, वो भी अपने आप को समझते हैं कि हम ज्ञानी हैं। और फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक का अर्थ लिखकर, भले ही कोई अत्यंत निंदनीय कार्य क्यों न करे, किंतु यदि वो भक्ति में लगा रहता है तो वो साधु माना जाता है, क्योंकि वो सम्यक रीति से अवस्थित होता है। जीवन की पूर्णता इसी में है कि कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम उत्पन्न किया जाए। जीवन की पूर्णता इसमें है कि कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम प्रकट किया जाए या उत्पन्न किया जाए, लिखा है हिंदी वाले ने लिखा है, लेकिन होगा प्रकट किया जाए। जीवन की सार्थकता यह है कि कृष्ण के पूर्ण प्रेम को प्रकट किया जाए। इसमें अन्य विधियों भी इसमें अन्य विधियां भी सहायक हो सकती हैं, किंतु यदि कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है तो अन्य सारी विधियां समय का व्यय समय का अपव्यय मात्र है। अब क्या बात आई कि जितने साधन यहां बताए थे, कौन से साधन बताए थे? व्रत और बहुत सारे व्रत, दान, तप, न्याय और क्या, पूजा, पवित्रता, व्रत, ये सारे के सारे सहयोगी हो सकते हैं भक्ति के, परंतु बिना भक्ति के ये सारे बेकार हैं। ये सब साधन हो और भक्ति नहीं हो तो किसी काम के नहीं है। ये जब प्रभुपाद जी ने लिखा तो उनके हृदय में भागवत का ये श्लोक स्फुरित हुआ, और वो श्लोक ये है, यह आगे श्लोक आप देख रहे हैं। हाँ जी, श्लोक आया दिखाइए श्लोक सबको। धर्म संस्तुत धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वकेशेन कथासु यः नोत्पाद्यते यदि रत्तिम शर्म एव हि केवलम। अब इसका अर्थ क्या हुआ? धर्म संस्थित पुंसाम विश्वकेशेन कथासु यः, वो धर्म का साधन जो भगवान के प्रति हमारे प्रेम को विकसित न करे तो वो सारे साधन शर्म एव हि केवलम, केवल प्रयास मात्र हैं और विडंबनम है, बेकार है, दिखावा है। सारे ही साधन बिना भक्ति के बेकार है, ये श्लोक प्रभुपाद ने इस दृष्टिकोण से दिया है। अन्य साधन सहायक हो सकते हैं परंतु बिना भक्ति के उनका कोई महत्व नहीं है। मनुष्य के द्वारा किसी भी वृत्ति से संबंधित किए गए कर्तव्य धर्म वैरत श्रम होते हैं यदि वे परम भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सकें। भागवत 1:2-8 किसी की पूर्णता की परीक्षा भगवान की प्रति भगवान के प्रति उसकी अनन्य भक्ति है। अब अंतिम लाइन पढ़िए दोबारा, किसी की पूर्णता की परीक्षा, इसका अर्थ है कि हम अपने साधन में पूर्ण हो गए, उसकी कसौटी क्या है, परीक्षा क्या है? उसकी परीक्षा है कि क्या है, भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति उसकी अनन्य भक्ति कितनी है। दान कितना देता है, तप कितना करता है, बहुत से लोग तप करते हैं, खाते पीते नहीं हैं, लेकिन भक्तों की निंदा करते हैं। ये बहुत होता है, बहुत सा देखा जाता है, ऐसा कि नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये सारे साधन भक्ति जो है, अब यहाँ श्लोक में शब्द क्या है, श्लोक में शब्द है, दो शब्द श्लोक के बहुत महत्वपूर्ण है। एक है प्रणायक मुकुंदस्य, मुकुंद को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनमें से कोई चीज भी पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान के पास कौन सी चीज की कमी है कि ये लोग देंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे? तो ये जो भी भगवान को देंगे वो तो पहले ही भगवान के पास पड़ा है, और जो देंगे वो भगवान का दिया हुआ ही देंगे, इनका अपना तो कुछ है नहीं। तो भगवान को प्रेम कौन, प्रसन्न कौन कर सकता है? भगवान को प्रसन्न करने का, प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं? तो प्रभुपाद ने बहुत विचार करके थोड़ी देर शांत रह के कहा, जब आप कृष्ण से प्रेम करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ये है वास्तविक प्रमाणिक गुरु का स्तर, कि वो अपने शिष्य में कृष्ण प्रेम के विकसित को देखना चाहता है। तो हमारी पूर्णता साधन की है कृष्ण प्रेम विकसित हो, और ये इसके लिए कृष्ण, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए, कृष्ण प्रसन्न हो जाए। और दूसरा शब्द नीचे क्या है, प्रियते अमला भक्तिया, और कृष्ण प्रसन्न होते हैं केवल शुद्ध भक्ति से, अनन्य भक्ति से। कृष्ण प्रसन्न होते हैं भक्ति से क्यों? भक्ति से भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में। भगवान किससे आकर्षित होते हैं? वैसे आप बताइए, कृष्ण किससे आकर्षित है? प्रेम से। और कृष्ण से प्रेम कौन करता है सबसे ज्यादा? राधा रानी। और भक्ति किसके आश्रित है? राधा रानी के। सीधी सी बात यह है कृष्ण उससे प्रसन्न होता है जिससे राधा रानी प्रसन्न होती है। ये प्रभुपाद जी का भजन है, भाई कृष्ण तभी प्रसन्न होए जब राधा रानी खुशी होए। ये प्रभुपाद का भजन है ना। हाँ, प्रभुपाद जी का भजन कैसे है ये, हम पढ़ते नहीं है, ये प्रभुपाद जी की अनुभूति का बहुत अच्छा भजन है कि भाई कहते हैं, भाई सुनो, कृष्ण तब प्रसन्न होगा जब राधा रानी खुशी होए। जब राधा रानी खुश होगी तभी कृष्ण प्रसन्न होंगे। और ये भक्ति क्या है, ये राधा रानी का स्वरूप है, ये स्वरूप शक्ति के अंतर्गत है। इसलिए कभी लोग पूछते हैं, आप तो भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता में तो राधा रानी का नाम निशान नहीं है। तो भगवद गीता में भी राधा रानी है, कहां है? महात्मानस तुम आम पारत देवीम प्रकृति माये, देवी प्रकृति राधा रानी है। ये भगवद गीता में राधा रानी है, महात्माओं को संरक्षण में रखती है। वैसे जहां कृष्ण है वहां राधा पहले से ही होती है, राधा कृष्ण से अलग हो ही नहीं सकती, चांद से चांदनी अलग नहीं हो सकती और कृष्ण से राधा अलग नहीं हो सकती। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, परंतु हमको कृष्ण के पास जाना है तो राधा के माध्यम से जाना है। और प्रभुपाद जी के पिताजी घर में लाके भोजन करा के संतों से कौन सी आशीर्वाद मांग कहते थे, मेरे बेटे को दो ये राधा रानी का भक्त बने। तो ये राधा रानी भक्त के भक्त का चमत्कार है कि इतने आप सब लोग बैठ के भागवत सुन रहे हैं इस उम्र में, नहीं तो प्रभुपाद के इस्कान से पहले इस उम्र के लोग भागवत नहीं सुना करते थे। वो बेचारे बूढ़े जिनके दांत होते नहीं थे, जो ऐसे घर से जगह नहीं होती थी, वो पड़े होते थे कथा सुनने में। ये प्रभुपाद राधा रानी की कृपा है, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है, ये गौर हरि की कृपा है। असल में ये देखा ये चमत्कार है। तो आकर्षण कृष्ण को कौन कर सकता है? भक्ति, क्योंकि वो राधा रानी के संरक्षण में है, तभी कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो आपको वृंदावन में राधा रानी ने आने का और रहने का सौभाग्य दिया है, तो आपके ऊपर राधा रानी प्रसन्न है, तब ये किया है ना। तो अब क्या करना चाहिए हमको? राधा रानी प्रसन्न है, कृष्ण प्रसन्न है, तो क्या करना चाहिए? तो ये कृष्ण का संदेश सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ये है सबसे ज्यादा आपके ऊपर कर्तव्य। प्रभुपाद ने राधा रानी की कृपा प्राप्त करके क्या किया? प्रभुपाद के पिताजी के प्रार्थना से बहुत से संतों में कोई तो साक्षात भगवान का महान भागवत भक्त आया होगा, जिसकी कृपा से राधा रानी की कृपा हुई और प्रभुपाद ने उस कृपा पाके क्या किया? पूरे विश्व को कृष्ण प्रेम का प्रचार किया। तो हम जो यहाँ वृंदावन में बैठे हैं, यहाँ पड़े नहीं रहे, 70 साल के बाद प्रभुपाद जी वृंदावन से गए थे, यहाँ हम 70 साल वाले अब हम यहाँ भजन में वास करने आए, निकलो बाहर यहाँ से, जाओ प्रचार करो। यहाँ पड़े रहने के लिए नहीं है, ये राधा रानी ने कृपा की है तो प्रचार करो। बाहर नहीं जा सकते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ बहुत से लोग आ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा पहले मंदिर नहीं थे, अब हमारे मंदिर में रोज के 10,000 लोग आ रहे हैं। क्या करते हो आप? हर एक लोग के पास कोई पहुंचे और कृष्ण का संदेश दे, राधा की कृपा का प्रचार करें, और कुछ पुस्तक दो, कुछ प्रसाद दो, कुछ मीठे वचनों से बात करो, ये काम करो, तभी आपका जन्म सार्थक, हमारा जन्म सार्थक है। केवल यहां रहना और रोटी तोड़ने से काम नहीं चलेगा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है? 5 मिनट जिज्ञासा के लिए रखने चाहिए। प्रचार करो, प्रचार करना सबसे मुख्य कार्य है, यही कार्य कृष्ण को बहुत प्रिय है। जो भगवान का प्रचार करता है वही कृष्ण मुकुंद को प्रिय है। प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार, ऐसा इसका अर्थ नहीं है सब जाके प्रवचन करो, चाहे मंदिर को सफाई करते हो ये भी प्रचार है। लोग इतने हमारे मंदिर में आते हैं कि ऐसा स्वच्छ मंदिर कहीं नहीं है। कीर्तन आपका मधुर है तो ये भी प्रचार है। जो कार्य करते हो उसको प्रचार के भाव से करो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ प्रभु जी। क्या ब्राह्मण को, ब्रह्म को क्या कर दिया है? द्विज। ओ ब्राह्मण को द्विज, ये तो संस्कृत में वैसे द्विज उसको कहते हैं जिसके दो जन्म हो, पहला जन्म माता पिता से होता है, दूसरा शास्त्र माता और गुरु पिता। तो ब्राह्मण गुरु के आश्रम में शास्त्र का अध्ययन करता है, उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। प्रभु जी आपका क्या कहना चाह रहे? मुरली में, मुरली जी आपका हाथ ऊपर है क्या? बोलिए, मुरली जी को माइक दीजिए। आप सुन के आ जाइए। हाँ,
दैव प्रकृति आपको बताया, दैव प्रकृति तो राधारानी के एक्सटेंशन है, डायरेक्ट राधारानी तो नहीं है, दैवी प्रकृति।
हाँ, दैवी शक्ति प्रकृति,
जितने मतलब प्रकृति के जितने मतलब लक्ष्मी ये है एक्सटेंशन है अपना राधारानी का, वो सब राधारानी से आए।
नहीं, राधा रानी के जो विस्तार है, सारी लक्ष्मियां हैं, गोपियां हैं, द्वारका की रानियां हैं, ये सब राधा रानी का विस्तार है, ये तो ठीक है।
ये भी देवी प्रकृति जो है, जैसे दुर्गा मैया, ये भी राधा रानी के अंश में है,
ये छाया है,
छाया है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसे करते हैं कि उनके जो एक्सटेंशन है उनके प्रति उनका अगर
अब भक्ति दो प्रकार की भक्ति है हम जानते हैं, एक रागनुगा भक्ति है और एक वैदि साधन भक्ति है। अगर कोई लक्ष्मी का उपासना करेगा तो वैदि साधन भक्ति के मार्ग से भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा, कोई द्वारका की रानियों के माध्यम से जाएगा तो भी वैदिक साधन भक्ति को प्राप्त करेगा, परंतु कोई गोपियों के माध्यम से जाएगा तो रागनुगा भक्ति को प्राप्त करेगा। तो दोनों हैं तो एक ही का विस्तार, परंतु फिर भी भक्ति के दो विभागों के कारण जो केवल ब्रज के ग्वाल बाल गोपियों जो कृष्ण के रागात्मिक भक्त है उनके पीछे चलेगा वो रागानुगा भक्ति को प्राप्त करेगा, जो लक्ष्मी या द्वारका की रानियों के अनुयायी बनेगा अनुगामी बनेगा वो वैदिक भक्ति के मार्ग से प्रेम को प्राप्त करेगा, वो भी बहुत महान है और उसका उदाहरण नारद है, ऐसा नहीं है कि वो सामान्य है, वो भी बहुत महान है। लेकिन छाया का अगर सहारा लेगा तो फिर बहुत से जन्मों के बाद जब उसको समझ में आएगा तब असलियत तक पहुंचेगा। तो दुर्गा का अनुयायी बनेगा तो शास्त्र कहता है बहु जन्म के बाद शुद्धि होगी तब भगवान के प्रति प्रेम कर सकता है। तो राधा रानी का शरण लेना, राधा रानी का शरण कैसे लेंगे कोई कहेगा, तो गुरु राधा रानी का प्रतिनिधि है, गुरु राधा रानी और नित्य बलराम नित्यानंद का प्रतिनिधि, दोनों का प्रतिनिधि। जो गुरु की कृपा है वो राधा रानी की कृपा है और जो गुरु की शिक्षा है वो बलराम जी की शिक्षा है, संयम है जो गुरु संयम में रखता है, नेम में रखता है, वो बलराम जी के मूसल के द्वारा रखता है सीधा। आयग्री व प्रभु का हाथ ऊपर है। यह भक्ति प्राप्त हो सकती है वैदि साधन भक्ति, लेकिन हमारा जो जो चेतना महाप्रभु के अनुयायी है ना, हमारे अंदर सॉफ्टवेयर ही राग भक्ति का पड़ा हुआ है, हमारे दिमाग में वही पड़ा हुआ है, इसलिए वो भक्ति चाहे कितनी महान हो लेकिन हमें आकर्षण नहीं करती।
लेकिन भक्ति होता है और भक्ति होता है, भक्ति होता है जिसको
राग अनुगम भक्ति से गोलोक और वैदि भक्ति से वैकुंठ।
हाँ,
तो मैंने उसको वहां तक पहुंचाया, वहां पहुंचेगा तब पूछेंगे कहाँ पहुंचा, हमने पार्सल डाल दिया है। बोलिए हायगिरी बाजी, आपका क्या आशीर्वाद है, सब लोग अब प्रसाद के लिए बहुत तत्पर हैं। राधे श्याम।
प्रभु ने जो भगवत गीता में वेद तपस्या दान व्रत से जो फल प्राप्त होता है वो भक्ति से ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात है कि अंतिम श्लोक है वेद
वो साथ साथ का अंत में यज्ञ तप तप दानम से जो फल मिलता है वो भक्ति से अपने आप मुफ्त में मिलता है, लेकिन वो फल भक्ति का नहीं, वो सेकेंडरी है, वो तो गौण फल है, मुख्य फल तो भक्ति का है, कृष्ण प्रेम। पर
सरकार नहीं है तो ये सब बेकार नहीं है,
आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हमारे हाईग्रीवा जी, ये सब सरकारी हैं, लेकिन सरकार नहीं है तो ये सब बेकार हैं। ये सब सरकारी हैं इसका मतलब है कि ये सब वैद्य हैं, परंतु अगर राजा नहीं बैठा हुआ है तो इन सब का कोई महत्व नहीं, और राजा है लेकिन राजा से भी ज्यादा चलती है रानी की, राजा से भी ज्यादा रानी की चलती है। हाँ, वो तो वो जहाँ राजा रानी नहीं है वहां की सरकार के सारे काम बेकार हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, श्री प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरे।